एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं जिनकी चिट्ठियों ने दुनिया बदल दी, प्रेरित पॉल। और उन्हें समझने के लिए हम गोता लगा रहे हैं ईपी सैंडर्स की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पॉल में।
नमस्कार, मैं हूं आपका साथी मेजबान। और वाकई ये किताब पॉल के बारे में हमारी जो बनी बनाई सोच है ना, उसको हिलाकर रख देती है। सैंडर्स ने कई पुरानी धारणाओं पर, आप कह सकते हैं, सवाल उठाए हैं जिन्हें हम शायद सच मान के बैठे थे।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। देखिए, पॉल कोई मामूली हस्ती नहीं है। पश्चिमी सोच, ईसाई धर्म, इन सब पर उनकी बहुत गहरी छाप है। लेकिन सैंडर्स की ये किताब हमें उन्हें सिर्फ एक धर्मगुरु की तरह नहीं,
हाँ,
बल्कि पहली सदी के एक यहूदी के तौर पर एक इतिहासकार की नज़र से देखने में मदद करती है। और ये आज भी ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि विचार कैसे बनते हैं, कैसे बदलते हैं और कैसे इतिहास को अलग अलग नज़रियों से देखा जा सकता है।
बिल्कुल सही कहा। और इस नए नज़रिए को समझने के लिए पहले लेखक को जानना ज़रूरी है ना?
हाँ बिल्कुल, ईपी सैंडर्स।
हाँ, तो ईपी सैंडर्स साहब कोई छोटे मोटे विद्वान नहीं थे। 20वीं सदी के आखिर और 21वीं सदी की शुरुआत में न्यू टेस्टमेंट यानी बाइबल के नए नियम के सबसे माने हुए जानकारों में से एक थे वो।
हाँ हाँ, ड्यूक, ऑक्सफोर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया उन्होंने।
बिल्कुल बिल्कुल, और ब्रिटिश अकेडमी के फेलो भी रहे। मतलब काफी बड़ा नाम था उनका अकादमिक जगत में।
और उनका तजुर्बा भी तो जबरदस्त था, 50 साल से ज्यादा उन्होंने।
हाँ, 50 साल से ज्यादा प्राचीन यहूदी धर्म और शुरुआती ईसाई धर्म को समझने में लगाए।
और कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ किताबी बातें नहीं करते थे, उन्हें वो पुरानी भाषाएं, ग्रीक, हिब्रू, अरामी, वो सब आती थीं।
उन पुराने दस्तावेजों को पढ़ सकते थे जिनसे हमें पॉल के बारे में पता चलता था।
सही,
और यही बात उन्हें खास बनाती है। अकादमिक दुनिया में एक आंदोलन चला था जिसे पॉल पर नया दृष्टिकोण कहते हैं,
न्यू पर्सपेक्टिव ऑन पॉल।
अच्छा, हाँ, सुना है इसके बारे में।
हाँ,
हाँ, तो सैंडर्स उसके सबसे बड़े पैरोकारों में से थे।
उनकी एक और किताब आई थी 1977 में, पॉल एंड पैलेस्टिनियन जुडेइज्म।
हाँ
उसने तो जैसे इस पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया था, क्रांति ला दी थी एक तरह से।
हाँ, और उनका फंडा एकदम क्लियर था। जैसा आपने बताया, वो पॉल को बाद के लोगों जैसे मार्टिन लूथर या जॉन कैल्विन उनके चश्मे से नहीं देखते।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो कहते हैं, भाई पॉल को समझना है तो उसे उसकी अपनी दुनिया यानी पहली सदी के यहूदी माहौल में रखकर देखो।
बिल्कुल,
उनका जोर तथ्यों और ऐतिहासिक विश्लेषण पर था, न कि बाद में गढ़ी गई धार्मिक धारणाओं पर। एक इतिहासकार की कठोरता थी उनके काम में।
सही बात है। तो चलिए अब सीधे किताब पर आते हैं। ये किताब आखिर है क्या, इसका सार क्या है?
हाँ, तो आसान शब्दों में कहें तो ये पॉल का एक छोटा लेकिन बहुत दमदार परिचय है। सैंडर्स का मकसद है कि पॉल के बारे में जो सदियों से गलतफहमियां चली आ रही हैं उनको दूर किया जाए और एक ज्यादा सच्ची ऐतिहासिक तस्वीर पेश की जाए। वो पॉल को बाद के धर्मशास्त्रियों के बनाए खांचों से निकालकर वापस उनकी अपनी पहली सदी की दुनिया में खड़ा करते हैं।
और किताब का सबसे बड़ा आइडिया क्या है, मतलब जो सबसे ज्यादा चौंका आता है?
हाँ, सबसे बड़ा आइडिया या कहें कि केंद्रीय तर्क ये है कि पॉल की सबसे बड़ी चिंता वो नहीं थी जो हम अक्सर सोचते हैं।
जैसे
कि कोई इंसान अपने पापों के बोझ से कैसे छुटकारा पाए। खासकर प्रोटेस्टेंट परंपरा में यही माना जाता रहा है।
हाँ हाँ, व्यक्तिगत अपराध बोध वाली बात।
बिल्कुल, और नहीं, उनका मुख्य मकसद ये था कि वो ये साबित करें कि यहूदी धर्म सिर्फ कर्मकांड पर आधारित है, जिसे कर्मों से धार्मिकता कहते हैं।
अच्छा, तो फिर उनकी मुख्य चिंता क्या थी?
इसके बजाय सैंडर्स कहते हैं, पॉल के मिशन और उनकी सारी सोच के केंद्र में ये सवाल था, जो लोग यहूदी नहीं हैं, मतलब गैर यहूदी, जेंटाइल्स, वो ईश्वर के चुने हुए लोगों में कैसे शामिल हो सकते हैं?
तो ये समूह की सदस्यता का सवाल था।
हाँ बिल्कुल, ये उनके लिए सबसे बड़ा पजल था जिसे उन्हें सुलझाना था। ये उनके धर्मशास्त्र की मुख्य समस्या थी।
तो सैंडर्स ये तर्क देते हैं कि पॉल की असली बहस यहूदी कानून यानी टोरा से नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं कि वो कह रहे हो कि कानून बेकार है।
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि उनकी दिक्कत कानून की विशिष्टता, एक्सक्लूसिविटी से थी।
विशिष्टता मतलब
ये कि क्या ईश्वर के करीब आने के लिए, उसके लोगों में शामिल होने के लिए, सबको पहले यहूदी बनना पड़ेगा? सारे यहूदी नियम कानून मानने पड़ेंगे?
अच्छा, क्योंकि उस समय कानून ही तो यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच की एक तरह की दीवार था, पहचान का निशान था।
बिल्कुल, और पॉल को जो बात समझ आई या कहें कि उन पर जो रहस्योद्घाटन हुआ, वो ये था कि ईसा मसीह के जरिए ईश्वर ने गैर यहूदियों के लिए भी अपने वादे कवेनेंट में शामिल होने का एक नया रास्ता खोल दिया है।
एक नया रास्ता?
हाँ, और इसके लिए उन्हें पूरी तरह यहूदी बनने की जरूरत नहीं। मतलब खतना करवाना, खास तरह का खाना खाना या सब्त का दिन मानना, ये सब अब अनिवार्य नहीं रहा।
और यहीं पर वो विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया जाना वाली बात फिट होती है।
एग्जैक्टली। सैंडर्स के मुताबिक इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी व्यक्ति के पाप माफ हो गए। हाँ, वो भी है, लेकिन
उससे बड़ा कुछ है।
हाँ, इसका ज्यादा बड़ा मतलब ये था कि ईश्वर अब ऐलान कर रहा है, जो भी मसीह पर विश्वास करेगा, चाहे वो यहूदी हो या गैर यहूदी, वो सब अब मेरे लोग हैं, एक ही परिवार का हिस्सा हैं।
तो ये सदस्यता की घोषणा थी एक तरह से।
हाँ, ये समूह की सदस्यता के बारे में ज्यादा था, न कि सिर्फ व्यक्तिगत अपराध बोध और क्षमा के बारे में। और देखिए, ये बात यहूदी धर्म की उस पुरानी छवि को भी तोड़ती है कि वो सिर्फ कर्म करके स्वर्ग कमाने वाला धर्म था।
ठीक है, ये तो वाकई कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। तो चलिए अब किताब के अंदर थोड़ा और झांकते हैं, देखते हैं सैंडर्स अपने ये तर्क कैसे बनाते, मतलब अध्यायों में कैसे आगे बढ़ते हैं।
हाँ बिल्कुल, तो किताब की शुरुआत में ही सैंडर्स पुरानी व्याख्या, खासकर मार्टिन लूथर वाली, को सामने रखते हैं।
16वीं सदी वाली?
हाँ, वो कहते हैं कि लूथर अपने समय की समस्याओं, जैसे चर्च में कर्मकांड का बोलबाला वगैरह, उसका हल पॉल की चिट्ठियों में ढूंढ रहे थे।
अच्छा, यानी वो पॉल पर अपने समय के सवाल थोप रहे थे।
हाँ, एक तरह से यही। और यहीं पर सैंडर्स वो बड़ा आइडिया लाते हैं, कोविनेंटल नॉमिनिज्म।
हाँ, ये शब्द आपने पहले भी बताया था, सुनने में थोड़ा भारी है।
हाँ है, पर मतलब सीधा है। पहली सदी का यहूदी धर्म ऐसा नहीं था कि लोग अच्छे काम करके स्वर्ग कमाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा नहीं था।
तो फिर कैसा था?
बल्कि वो मानते थे कि ईश्वर ने उन पर कृपा करके एक वादा कवेनेंट किया है, और कानून का पालन उस वादे के अंदर बने रहने, उस रिश्ते को निभाने का तरीका था।
ओह, तो बुनियाद कृपा पर थी, कमाई पर नहीं।
एग्जैक्टली, कृपा पहले थी, कानून उसका जवाब था। ये पूरी सोच ही बदल देता है ना।
हाँ बिल्कुल, और सैंडर्स इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें जानकारी कहाँ से मिल रही है, मतलब स्रोत क्या है।
बिल्कुल, वो कहते हैं कि पॉल की अपनी लिखी चिट्ठियाँ, जैसे रोमियो, कुरिंथियो, गलातियों के नाम, ये सबसे भरोसेमंद स्रोत हैं।
प्राइमरी सोर्स, और वो प्रेरितों के काम,
एक्ट्स ऑफ द अपोसल्स वाली किताब।
हाँ, वो किताब जो ल्यूक ने लिखी।
सैंडर्स कहते हैं वो भी काम की है, लेकिन उसे दूसरे दर्जे का मानना चाहिए, सेकेंडरी।
क्यों?
क्योंकि ल्यूक का अपना नजरिया और लिखने का मकसद था, जो हमेशा पॉल की अपनी बातों से पूरी तरह मेल नहीं खाता। वो इतिहास लिख रहे थे अपने तरीके से।
हाँ ठीक है, तो स्रोतों के बाद फिर पॉल की जिंदगी।
हाँ, इसके बाद सैंडर्स पॉल की जिंदगी पर आते हैं, एक छोटी मगर बहुत ठोस तस्वीर खींचते हैं। टार्सस शहर का रहने वाला एक प्रवासी यहूदी, अच्छी पढ़ी लिखी पृष्ठभूमि थी उसकी, और खुद को एक जोशीला फरीसी बताता है। फरीसी वो लोग थे जो कानून को बहुत बहुत गंभीरता से लेते थे।
हाँ, पॉल तो खुद कहता है कि कानून मानने में वो निर्दोष था।
बिल्कुल, तो वो जो एक छवि है ना, कि पॉल अपने पापों के बोझ तले बुरी तरह दबे हुए थे, सैंडर्स उस छवि को खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं ऐसा नहीं था।
और फिर वो दमिश्क वाली घटना, जिसे अक्सर पॉल का धर्मांतरण या कन्वर्जन कहा जाता है।
हाँ, सैंडर्स कहते हैं उसे धर्मांतरण कहना शायद ठीक नहीं, उसे बुलावा या कॉलिंग कहना ज्यादा सही होगा।
बुलावा?
मतलब पॉल ने अपना यहूदी धर्म छोड़ा नहीं था, वो यहूदी ही रहे, बल्कि इज़राइल के ईश्वर ने उन्हें एक खास काम सौंपा था, एक मिशन दिया था।
और वो मिशन था गैर यहूदियों तक मसीह का संदेश पहुंचाना।
एग्जैक्टली, गैर यहूदियों के लिए प्रेरित अपोस्टल बनने का आदेश था वो।
और इसी मिशन के लिए उन्होंने इतनी यात्राएं की, चर्च बनाए।
हाँ, और इस चक्कर में कई बार उनकी दूसरे प्रेरितों से ठन भी गई, जैसे यरूशलेम में एक मीटिंग हुई थी, या एंटियोक शहर में पतरस सिमोन का टकराव हुआ था। ये सब उनकी चिट्ठियों में झलकता है, उनका जुनून, उनकी चिंताएं।
ये तो हुई उनकी जिंदगी की बात। अब आते हैं पॉल के सोचने के तरीके पर। आपने कहा था सैंडर्स इसे बड़े मजेदार ढंग से समझाते हैं, वो समस्या से समाधान तक नहीं जाते।
हाँ,
बल्कि समाधान से समस्या तक आते हैं।
ये क्या पहेली है, थोड़ा और बताइए।
हाँ, ये सैंडर्स का एक मुख्य व्याख्यात्मक सिद्धांत है। मतलब ये है कि पॉल की सोच की शुरुआत यहाँ से नहीं होती कि अरे इंसान तो बड़ा पापी है, अब उसे कैसे बचाया जाए। नहीं, तो कहाँ से होती है शुरुआत?
उनकी शुरुआत होती है समाधान से। वॉटल सच्चाई जिससे वो शुरू करते हैं वो ये है कि ईश्वर ने यीशु की मौत और दोबारा जी उठने में कुछ बहुत बड़ा निर्णायक काम कर दिया है। ये उनके लिए पत्थर की लकीर थी।
अच्छा, ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट था।
हाँ, अब इस अटल सच्चाई की रोशनी में वो पीछे मुड़कर देखते हैं और फिर समझते हैं कि इंसान की असली हालत क्या है, उसकी जरूरत क्या है।
ओह, तो अगर मसीही उद्धार का एकमात्र तरीका है जैसा पॉल मानते थे,
हाँ,
तो इसका सीधा मतलब निकलता है कि हर कोई, चाहे वो यहूदी हो या गैर यहूदी, उसे इस उद्धार की जरूरत है।
वो बिल्कुल
क्योंकि
सही।
हर कोई कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, पाप की गिरफ्त में है।
बिल्कुल सही। और इसीलिए यहूदी कानून मतलब टोड़ा, वो उद्धार पाने का कोई दूसरा समानांतर रास्ता नहीं हो सकता, वो मसीह का प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकता।
समझ आया। और यहीं से फिर कानून पर पॉल का वो थोड़ा उलझा हुआ नजरिया जुड़ता है ना?
हाँ बिल्कुल। सैंडर्स साफ करते हैं कि पॉल कानून को बुरा नहीं कहते थे, कभी नहीं। वो मानते थे कि ये ईश्वर ने दिया है, ये अच्छा है, पवित्र है,
लेकिन
ये उद्धार नहीं दे सकता। हाँ, यहूदियों के लिए ये अब भी जरूरी था, उनकी पहचान का हिस्सा था, वाचा के तहत उनकी जिम्मेदारियां थीं, पर उन गैर यहूदियों के लिए नहीं जो अब मसीह के जरिए ईश्वर तक आ रहे थे।
एग्जैक्टली।
उनके लिए ये बाध्यकारी नहीं था।
तो फिर कानून का मकसद क्या था पॉल की नजर में अगर वो उद्धार नहीं देता?
सैंडर्स कहते हैं पॉल मानते थे कि कानून एक तरह से आईना दिखाता है, वो पाप को उजागर करता है, दिखाता है कि हम कितने अधूरे हैं, पाप कितना शक्तिशाली है,
और इस तरह वो हमें मसीह की जरूरत महसूस कराता है।
हाँ एक तरह से। लेकिन सबसे बड़ा पंगा इसकी भूमिकाओं के लेकर था, जैसा हमने पहले कहा।
हाँ, वो बाउंड्री लाइन वाली बात।
बिल्कुल, असली मुद्दा ये था कि कानून एक तरह की बाउंड्री लाइन बन गया था। अगर गैर यहूदियों को भी उद्धार के लिए पूरा कानून मानना पड़ता, तो इसका मतलब होता कि मसीह का काम, मसीह की कुर्बानी अपने आप में काफी नहीं है, उसमें कुछ और जोड़ना पड़ेगा।
अच्छा, और पॉल ये मानने को तैयार नहीं थे?
बिल्कुल नहीं। उनके लिए अब विश्वास ही ईश्वर के परिवार में शामिल होने का मुख्य दरवाजा बन गया था, कानून की जगह। विश्वास अब सदस्यता का प्राथमिक चिन्ह था।
और ये जो पाप की बात पॉल बार बार करते हैं, उसका क्या मतलब है? क्या सिर्फ गलत काम करना, जैसे झूठ बोलना या चोरी करना?
सैंडर्स समझाते हैं कि पॉल के लिए पाप, सिन, अक्सर बड़े एस से लिखा जाता है, इसे दर्शाने के लिए, सिर्फ अलग अलग गलत काम या व्यक्तिगत उल्लंघन नहीं था।
तो फिर
ये एक बड़ी दुनिया पर हावी ताकत थी, एक ब्रह्मांडीय शक्ति जिसने पूरी इंसानियत को अपना गुलाम बना रखा था, जैसे कोई तानाशाह।
ओह, ये तो काफी गंभीर बात है।
हाँ, रोमियो की चिट्ठी के शुरू के अध्यायों रोमियो 1:3 में पॉल यही तर्क देते हैं। सैंडर्स दिखाते हैं कैसे पॉल कहते हैं कि गैर यहूदी झूठे देवताओं की पूजा में फंसे हैं, मूर्ति पूजा के गुलाम हैं।
और यहूदी, उनके पास तो कानून था।
हाँ, लेकिन पॉल कहते हैं कानून होने के बावजूद यहूदी भी पाप के अधीन हैं। कानून समस्या को सुलझाता नहीं, बल्कि पाप की ताकत को और ज्यादा उजागर कर देता है, कोई भी उससे बच नहीं सकता।
तो फिर रास्ता क्या है इस गुलामी से, इस लाचारी से निकलने का?
जाहिर है पॉल के लिए जवाब एक ही था, यीशु मसीह का सुसमाचार। इंसान की इस सार्वभौम दुर्दशा का हल ईश्वर ने खुद यीशु में अपने उद्धार कार्य के जरिए किया।
और इस सुसमाचार में क्या क्या शामिल था?
इसमें मुख्य रूप से दो पहलू थे। एक, विश्वास के जरिए धर्मी ठहराया जाना, जस्टिफिकेशन बाय फेथ, यानी ईश्वर की घोषणा कि अब तुम मेरे हो, तुम्हारा रिश्ता मुझसे ठीक हो गया है।
और दूसरा
मसीह की मृत्यु के माध्यम से छुटकारा, यानी रिडेम्पशन, और सुलाह यानी रिकंसिलिएशन, यानी एक ऐसा प्रायश्चित का बलिदान जिसने पाप की समस्या का निपटारा कर दिया और इंसान और ईश्वर के बीच की दूरी मिटा दी।
लेकिन सैंडर्स यहाँ एक और परत जोड़ते हैं, है ना? कुछ और भी है जो शायद ज्यादा अहम है।
हाँ बिल्कुल। सैंडर्स यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं जो उनके मुताबिक पॉल की सोच का दिल है। वो कहते हैं कि उद्धार सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है कि हाँ तुम अब बरी हुए, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और वास्तविक है।
तो क्या है वो?
ये एक असल रहस्यमयी और सामूहिक हकीकत है, जिसे सैंडर्स कहते हैं सहभागिता, पार्टिसिपेशन।
सहभागिता, पार्टिसिपेशन, ये क्या है, थोड़ा और समझाएंगे?
हाँ देखिए, पॉल बार बार एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, मसीह में होना या मसीह के साथ, विद क्राइस्ट। सैंडर्स का तर्क है कि ये सिर्फ अलंकार या कहने की बात नहीं है,
तो ये असलियत है।
हाँ, उनका मानना है कि जब कोई बपतिस्मा लेता है तो वो जैसे रहस्यमयी ढंग से मसीह के साथ उसकी मौत और उसके दोबारा जी उठने में सचमुच जुड़ जाता है, एकजुट हो जाता है।
मतलब ये सिर्फ एक सिंबल नहीं है?
नहीं, सैंडर्स कहते हैं ये हकीकत में प्रभुत्व का हस्तांतरण है, एक वास्तविक बदलाव। अब विश्वासी पाप के प्रभुत्व में नहीं है, बल्कि वो मसीह के शरीर, बॉडी ऑफ क्राइस्ट का हिस्सा है, मसीह का जीवन उनमें बहता है।
बाप रे,
सैंडर्स मानते हैं कि पॉल के लिए ये शामिल होने वाला सहभागी मॉडल उस कानूनी मॉडल से भी ज्यादा बुनियादी, ज्यादा केंद्रीय था। उद्धार का अनुभव करना ही है।
ये वाकई सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। उद्धार सिर्फ स्टेटस बदलना नहीं, बल्कि एक नए जीवन में शामिल होना है।
बिल्कुल।
तो फिर इस नई हकीकत का असर रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ता है? चर्च, नैतिकता, भविष्य, इन सब के बारे में पॉल क्या सोचते थे सैंडर्स के अनुसार?
हाँ, तो देखिए, चर्च वो जगह है, वो समुदाय जहाँ ये नई जिंदगी जी जाती है। ये कोई बिल्डिंग नहीं, बल्कि लोगों का समूह है जिसमें यहूदी और गैर यहूदी सब एक साथ हैं, एक शरीर की तरह।
और नैतिकता यानी सही गलत का पैमाना, क्या वो नियमों की कोई नई लिस्ट थी?
नहीं, सैंडर्स कहते हैं पॉल के लिए नैतिकता कोई नियमों की नई लिस्ट नहीं थी जैसे फरीसी मानते थे, बल्कि ये आत्मा की अगुवाई में एक नई तरह की जिंदगी जीने का तरीका था। पवित्र आत्मा विश्वासी को अंदर से बदलता है और सही राह दिखाता है।
और उसका निचोड़ क्या था?
निचोड़ था प्यार,
प्रेम।
प्रेम ही सबसे बड़ा नियम है जो बाकी सब नियमों को पूरा करता है।
और भविष्य, आपने कहा पॉल को लगता था अंत समय करीब है।
हाँ, पॉल तो जैसे आने वाले कल की दहलीज पर ही जी रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि मसीह जल्द ही वापस आने वाले हैं, जिसे परूसिया कहते हैं। मुर्दे जी उठेंगे, आखिरी फैसला होगा और पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। नया आकाश और नई पृथ्वी।
इसे सर्वनाशवादी या एपोकलिप्टिक सोच कहते हैं ना?
हाँ, एपोकलिप्टिक विश्व दृष्टि। और ये जो उम्मीद थी ना, इसी ने उनके पूरे मिशन और उनकी सारी नैतिक शिक्षा को एक गजब की अर्जेंसी, एक तेजी, एक तात्कालिकता दी थी। समय कम है, काम ज्यादा है।
वाह, तो इस पूरी बातचीत से कुछ बहुत गहरे और अहम मुद्दे उभर कर आ रहे हैं ना? इन्हें थोड़ा समेटने की कोशिश करते हैं। मुख्य विषय क्या रहे?
हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से पहला और शायद सबसे बुनियादी मुद्दा है पॉल का मौलिक यहूदीपन। वो जीवन भर यहूदी बने रहे।
ये बात बहुत चौंकाने वाली है कई लोगों के लिए।
हाँ, उनका मिशन यहूदी उम्मीदों की पूर्ति था, यहूदी धर्म का त्याग नहीं। ये हमें अपनी जड़ों और पहचान की निरंतरता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारे विश्वास विकसित हो सकते हैं पर हमारी बुनियाद बनी रह सकती है।
सही। दूसरा, वो कोवेनेंटल नॉमिनिज्म बनाम कर्म धार्मिकता वाली बात, यानी यहूदी धर्म को अनुग्रह की वाचा के रूप में समझना, न कि सिर्फ योग्यता अर्जित करने की प्रणाली के रूप में।
हाँ, और ये हमें दूसरे धर्मों को भी समझने में मदद करता है। जैसे भारत में भी कई धार्मिक परंपराओं में कर्म और कृपा के बीच एक रिश्ता, कभी कभी तनाव भी दिखता है। ये हमें विभिन्न विश्वास प्रणालियों को बिना किसी पूर्वाग्रह के समझने में मदद कर सकता है।
तीसरा, गैर यहूदियों को शामिल करने की केंद्रीयता, ये पॉल के धर्मशास्त्र के पीछे सैंडर्स के अनुसार मुख्य प्रेरक शक्ति थी।
बिल्कुल, विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया जाना का मतलब ही यही था कि अब दरवाजा सबके लिए खुल गया है। गैर यहूदी बिना यहूदी बने ईश्वर के लोग बन सकते हैं।
और ये आज भारत जैसे विविध समाज में समावेश, इंक्लूजन और विभिन्न समूहों के बीच समानता के सवालों से कितना जुड़ता है?
बहुत ज्यादा। चौथा, मसीह में भागीदारी के रूप में उद्धार। ये सिर्फ एक कानूनी स्थिति नहीं, बल्कि मसीह के साथ एक वास्तविक अनुभवात्मक मिलन है।
हाँ, ये भक्ति या आध्यात्मिक अनुभव के व्यक्तिगत पहलुओं पर जोर देता है, जो कई भारतीय आध्यात्मिक मार्गों में भी महत्वपूर्ण है।
सही का। और पांचवा, वो सर्वनाशवादी विश्व दृष्टि। पॉल का मानना था कि वे अंत समय की शुरुआत में जी रहे थे, जिसने उनके मिशन और नैतिकता में वो तात्कालिकता ला दी।
ये हमें भी तात्कालिकता की भावना और दुनिया में एक बड़े उद्देश्य के लिए जीने के विचार पे सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है।
बिल्कुल,
ये वाकई ऐसे विषय हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। और सैंडर्स की किताब में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो दिमाग में बैठ जाती हैं, पॉल को समझने की चाबी जैसी लगती हैं। कुछ मुख्य विचार या उद्धरण जैसे?
हाँ हैं। जैसे पहला विचार, पॉल का धर्मांतरण वास्तव में एक बुलावा था, गैर यहूदियों तक सुसमाचार ले जाने का एक भविष्य सूचक आदेश।
हाँ, ये उनके मिशन के विशिष्टता को समझाता है और उनकी यहूदी पहचान भी बनाए रखता है।
बिल्कुल। दूसरा विचार, पॉल एक यहूदी बने रहे जो मानते थे कि ईश्वर ने मसीह के माध्यम से गैर यहूदियों तक उद्धार पहुंचाया है।
ये उस पारंपरिक विचार को चुनौती देता है कि पॉल ने यहूदी धर्म को अस्वीकार कर दिया था।
सही। तीसरा विचार, पॉल की प्राथमिक चिंता व्यक्तिगत अपराध बोध और क्षमा नहीं थी, बल्कि ये सवाल था कि गैर यहूदियों को ईश्वर के लोगों में कैसे शामिल किया जा सकता है।
ये धर्मी ठहराए जाने की समझ को व्यक्तिगत से सामूहिक सदस्यता के मुद्दे पर केंद्रित करता है। यही उनके मिशन का दिल था।
हाँ, और चौथा विचार, ईश्वर की धार्मिकता righteousness of God मुख्य रूप से एक दैवीय गुण को संदर्भित नहीं करती, बल्कि ब्रह्मांडीय न्याय को बहाल करने के लिए ईश्वर की उद्धार क्रिया को संदर्भित करती है।
ये उनकी एपोकलिप्टिक सोच से जुड़ता है कि ईश्वर सक्रिय है, दुनिया को ठीक कर रहा है।
बिल्कुल, ये सारे विचार मिलकर पॉल और प्रारंभिक ईसाई धर्म की एक ज्यादा जटिल, ज्यादा ऐतिहासिक और शायद ज्यादा दिलचस्प तस्वीर बनाते हैं।
तो अब बड़ा सवाल ये है कि सैंडर्स की ये गहरी ऐतिहासिक बातें, ये अंतर्दृष्टि आज हमारे किस काम आ सकती हैं? इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना?
हाँ, ये अहम सवाल है। देखिए, कई बातें हैं। सबसे पहले तो अंतरधार्मिक समझ बढ़ती है, खासकर ईसाई यहूदी संबंधों के लिए बहुत जरूरी है।
और ये हमें सिखाता है कि किसी भी धर्म को उसके अपने संदर्भ में समझो, रूढ़ियों या सुनी सुनाई बातों पर मत जाओ।
बिल्कुल। दूसरा, पवित्र ग्रंथों की व्याख्या कैसे करें, इस पर सोचने का मौका मिलता है। ऐतिहासिक संदर्भ, दर्शक, लेखक का उद्देश्य, इन सबको समझना कितना जरूरी है।
हाँ, पुराने ग्रंथों को आज के पाठक कैसे समझें?
तीसरा, समावेशी समुदायों का निर्माण। पॉल का जो संघर्ष था ना, अलग अलग समूहों को एक चर्च में लाने का, वो आज विविधता और समावेश की चुनौतियों के लिए एक मॉडल जैसा है। साझा विश्वास और नजरिए के आधार पर एकता कैसे बने।
चौथा, वो कानूनीपन पर पुनर्विचार करने की जरूरत। क्या हमारे नियम और परंपराएं दूसरों को बाहर करने या अपनी हैसियत जताने का तरीका बन गई हैं?
हाँ, या वे साझा पहचान और ईश्वर की कृपा के प्रति एक आभारी प्रतिक्रिया है, ये सवाल पूछना चाहिए।
और पांचवा, शायद परिवर्तन को गले लगाना। पॉल की जिंदगी खुद दिखाती है कि गहरे बदलाव संभव है।
बिल्कुल, एक कट्टर व्यक्ति का पूरी तरह से बदल जाना और एक नए मिशन के लिए समर्पित हो जाना।
तो ये सब दिखाता है कि इतिहास को समझना सिर्फ पुरानी बातें जानना नहीं है, बल्कि आज की मुश्किलों और सवालों को देखने का एक नया नजरिया पाना भी है।
बिल्कुल सही।
तो इस सब पूरी गहरी बातचीत के बाद आपके लिए सबसे चौंकाने वाली या सबसे अहम सीख क्या रही इस किताब से?
मेरे लिए शायद सबसे अहम बात पॉल की यहूदी पहचान पर वो लगातार जोर देना है, और उद्धार को सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि मसीह में शामिल होने, पार्टिसिपेशन के रूप में देखना। वो सहभागिता वाला विचार, ये ज्यादा जीवंत और गहरा लगता है।
हाँ, वो मसीह में होना वाली बात वाकई शक्तिशाली है।
हाँ।
आपके लिए क्या रहा? और मेरे लिए ये समझना कि किसी भी व्यक्ति या विचार को उसके अपने ऐतिहासिक संदर्भ में देखना कितना ज्यादा जरूरी है। हम अक्सर अपनी सोच दूसरों पर थोप देते हैं। साथ ही पॉल की सोच को समाधान से समस्या तक देखने का तरीका भी कमाल का लगा।
हाँ, ये व्याख्या का एक बहुत उपयोगी टूल है।
तो हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। यदि पॉल का मुख्य ध्यान और जुनून गैर यहूदियों को ईश्वर के परिवार में शामिल करना था, तो ये सोच आज हमें अलग अलग पृष्ठभूमियों पर विश्वासों के लोगों के बीच पुल बनाने और ज्यादा समावेशी, ज्यादा खुले समुदाय बनाने में कैसे मदद कर सकती है?
बहुत अच्छा सवाल है, सोचने के लिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।